धवला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 19।
नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं अवगय शुद्धभावे उवगय कम्मख उच्चौद्भावे परमीय सौवरहंते
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें प्रथम खंड का नाम है जीवस्थान और अपना विषय है भावानुगम। पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 197 पर आ गए। 197 देखो, यहाँ जो 196 से जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये शंका समाधान किस बात पर हो रही उसके हम देखते बात। यह सूत्र में पूछा गया था साक्षात्सन सम्य दृष्टि यह कौन सा भाव है, और यहाँ बताया था कि वो पारिणामिक भाव है। तो उस पर शंका समाधान चल रही थी कि जब पारिणामिक भाव कहते हैं तो ये भाव यहाँ घटित नहीं होता है, ऐसा शंकाकार का शंका है। क्यों? क्योंकि दूसरों से नहीं उत्पन्न होने वाले परिणाम के अस्तित्व का विरोध है। यानी यहाँ दूसरों के निमित्त से कुछ परिणाम हो ही रहे, नहीं उत्पन्न होने वाले उसका विरोध है, यानी उत्पन्न हो रहे कह रहे। यदि अन्य से उत्पत्ति मानी जावे तो पारिणामिक नहीं रह सकता, यानी यहाँ भी कर्मों का चल रहा है उदय, और फिर भी आप इसको पारिणामिक क्यों कह रहे हो, ये उनका प्रश्न है। क्योंकि निष्कारण वस्तु के सकारणत्व का विरोध है, यानी पारिणामिक निष्कारण है, वो सहज भाव है, और उसके अगर आप कारण उदय मानते हो तो सकारण हो जाएगा, ये हो नहीं सकता, इसलिए पारिणामिक भाव नहीं हो सकता, ये उनका कहना है। समाधान कर रहे हैं वो इस प्रकार, जो कर्मों के उदय उपशम क्षय और क्षोपशम के बिना अन्य कारणों से उत्पन्न हुआ परिणाम है वह पारिणामिक कहा जाता है, न कि निष्कारण भाव को पारिणामिक कहते हैं। निष्कारण भाव नहीं कहा उन्होंने, कर्मों के उदय उपशम क्षय क्षोपशम का कोई वहां कारण नहीं है, बस इतना लिया। क्योंकि कारण के बिना उत्पन्न होने वाले परिणाम का अभाव है, यानी प्रत्येक परिणाम पर्याय में निमित्त उपादान दो कारण होते हैं। यहाँ तो निमित्तों की बात है, तो वहां तो कोई ना कोई वहां निमित्त होगा ही होगा। फिर शंका पूछ रहे, ये समझ में नहीं यहाँ। अब शंका, यानी परिणाम है तो वहां तो कारण होगा ही, स्वभाव भाव है जो गुण है उसके लिए कारण नहीं होता, पर यहाँ परिणाम है वहां कारण होना ही चाहिए। अब शंका पर्याय, शंकाकार पूछ रहे, सत्व प्रमेयत्व आदिक भाव कारण के बिना भी उत्पन्न होने वाले पाए जाते हैं, तो उसके लिए क्या कारण है? तो उसके समाधान कहते हैं, नहीं, क्योंकि विशेष सत्व आदि के स्वरूप से नहीं परिणत होने वाले सत्वादि सामान्य नहीं पाए जाते हैं। यानी सत्व है परंतु वो तो विशेष रूप से परिणमित तो हो ही रहे, सत्ता है प्रत्येक की परंतु वहां पर भी परिणमन तो चल ही रहा है। सत्ता को सामान्य कहेंगे, उसके परिणमन को विशेष कहेंगे। तो यहाँ कह रहे, विशेष सत्वादि के स्वरूप से नहीं परिणत होने वाले सत्वादि सामान्य पाए नहीं पाए जाते, यानी विशेष बिना सामान्य नहीं होता, यानी वहां परिणति होगी ही, यही तो कह रहे यहाँ पर। फिर शंकाकार पूछते, सासादन सम्य दृष्टिपना भी सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनों के विरोधी अनंतानुबंधी चतुष्क के उदय के बिना नहीं होता है, इसलिए इसे औदय क्यों नहीं मानते, ये प्रश्न है। क्योंकि हमने देखा था कभी होता है सासाधन, प्रथम उपशम का काल चल रहा है और सासाधन क्यों होता है, अनंतानुबंधी के उदय से होता है। अनंतानुबंधी कैसा है, चारित्र का भी विरोधी है, सम्यक्त्व का भी विरोधी है, तो इसको औदय क्यों नहीं कहते, ये प्रश्न है। समाधान, यह कहना सत्य है किंतु उस प्रकार की यहाँ विवक्षा नहीं है, क्योंकि आदि के चार गुणस्थानों संबंधी भावों की प्ररूपणा में दर्शन मुनि कर्म के सिवाय शेष कर्मों के उदय की विवक्षा का अभाव है, ये मुख्य कारण है। दर्शन मुनि की क्या पोजीशन है, दर्शन मुनि के कौन से कर्म के उदय के कारण सासाधन हुआ, वो दर्शन मुनि है
नहीं, वो तो चारित्र मुनि है।
मैंने पूछा दर्शन मुनि के हम की क्या कहते, उदय उपशम क्षय क्षोपशम, तो दर्शन मुनि का यहाँ उपशम है क्या, उपशम से सासाधन हुआ है क्या,
नहीं चारित्र मुनि का
नहीं हुआ, दर्शन मुनि के उपशम से उपशम समय तो हुआ था, दर्शन मुनि के किसी उसके कारण ये नहीं हुआ है, वो अनंतानुबंधी के उदय से हुआ है। दर्शन मुनि का उपशम के काल, उपशम का कार्य तो हो चुका था पहले ही, ऑलरेडी उपशमित पड़े हैं, अभी नया कैसा नहीं पूरा हुआ, वो तो उदय के लिए वो बाकी है, उपशम करने का कार्य नहीं हो रहा है। उपशम कब किया था, जब अंतर किया था और नीचे पहली स्थिति हुई थी, उस काल में उसने उपशमने का कार्य किया, उपशमने का कार्य पूरा हुआ तब जाके सम्यक को प्राप्त हुआ, अभी कोई उपशमने का कार्य अब नहीं हो रहा, समझ में आई ना, उपशमित पड़ा है वो, कुछ नहीं कर रहा है, वाराणसी क्यों कहा, ना उदय है ना उपशम है ना क्षय है ना क्षोपशम है, इस तरह देखो फिर से कहते हैं कि ये पहले चारों ही गुणस्थानों में केवल मात्र दर्शन मुनि की अपेक्षा लगाना है। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय है, दूसरे में दर्शन मुनि का कुछ नहीं है हम कहें, तीसरे में मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति पड़ी है भविष्य में, और उदय है सम्यक मिथ्यात्व, और चौथे में या तो तीनों उपशमित है या क्षय है या क्षोपशम है, ख्याल में आते हैं ना, दर्शन मुनि की अपेक्षा लगाना पहले चार गुणस्थानों में। क्योंकि वो परिभाषा है मोह और कयोग के निमित्त से, तो क्या निमित्त है, पहले चार गुणस्थानों में दर्शन मुनि का ही निमित्त लेना है, अन्य की वहां क्या पोजीशन है वो यहाँ चर्चा नहीं है। ने पहले चार गुणस्थानों में तो दर्शन मुनि की अपेक्षा लगे, यहाँ देखते अभी फिर से समाधान पढ़ती हूँ 197 पृष्ठ पर। यह कहना सत्य है, क्यों क्या कहना सत्य है, अनंतानुबंधी के बिना उदय बिना तो नहीं हो सकता, तो उसका उदय मानो, तो कहते तुम कह रहे हो कि यहाँ उदय है तो वो बात सत्य है, परंतु उस प्रकार की यहाँ विवक्षा नहीं है। देखो कौन सा प्रकरण और उसमें विवक्षा अपेक्षा क्या चल रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट, नहीं तो कोई भी वाक्य लिखो देखो यहाँ ऐसा लिखा है ना, ऐसा नहीं चलता आगम में, क्योंकि आदि के चार गुणस्थानों संबंधी भावों की प्ररूपणा में दर्शन मुनि कर्म के सिवाय शेष कर्मों के उदय की विवक्षा का अभाव है, उसकी विवक्षा यहाँ नहीं कह रहे। 197 दर्शन मुनि के मिथ्यात्व का उदय, क्योंकि उसके तीन प्रकृति होने के बाद उसमें से किसका उदय है वो देखेंगे वहां पर। इसलिए विवक्षित दर्शन मुनि कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से अथवा क्षोपशम से नहीं होता। आप कहेंगे वहां उपशम चल रहे ना, उपशम चल रहे उसके कारण सासाधन नहीं हुआ है, उपशम के कारण उपशम सम्यक्त हुआ था, वो कारण इसका नहीं है, अतः सासाधन सम्यक्त निष्कारण है, यानी दर्शन मोहनीय की अपेक्षा निष्कारण है, सर्वथा निष्कारण कुछ होता ही नहीं है, पर्याय है तो वहाँ कारण होगा ही, और इसलिए इसके पारिणामिक पना भी है। यानी पहले उन्होंने बताया था ना निष्कारण भाव को नहीं कहते, फिर भी उन्होंने निष्कारण कह दिया यहाँ पर, यानी अन्य कारणों से उत्पन्न हुआ है परिणाम, इसलिए उसको पारिणामिक कहा। पहले निष्कारण होने के कारण उसका निषेध किया था, ठीक है, फिर हाँ यानी वहाँ उदय उपशंस नहीं है, बस इतना ही लेना है। शंका, इस न्याय के अनुसार तो सभी भावों के पारिणामिक पने का प्रसंग प्राप्त होता है। यदि उक्त न्याय के अनुसार सभी भावों के पारिणामिक पने का प्रसंग आता है तो आने दो, कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं आता। क्या कहा, ये कहेंगे सभी भावों को पारिणामिक कहेंगे तो होने दो, क्योंकि जीव का ही परिणाम है वैसे, यानी वह वो विवक्षा व किसी अविवक्षित यानी अपेक्षा के कारण सभी भाव पारिणामिक पने कहेंगे तो कहते हो सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, विरोध नहीं है। फिर शंका कर, यदि ऐसा है तो फिर अन्य भावों में पारिणामिक पने का व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, सबको पारिणामिक कह दो, बोले वो औदयिक हो क्षमिक हो सबको पारिणामिक कह दो। नहीं, क्योंकि सासादन सम्यक्तों को छोड़कर विवक्षित कर्म से नहीं उत्पन्न होने वाला अन्य कोई भाव नहीं पाया जाता। यानी सासादन में ऐसा है, वहाँ चार में तो दर्शन होने की अपेक्षा है और वहीं यह ऐसा भाव पाया जाता है, अन्यत्र कोई ऐसी अपेक्षा नहीं लगती है।
क्या ये क्या बताना चाहते हैं, विवक्षित कर्म से नहीं उत्पन्न होने वाला, विवक्षित कर्म से नहीं उत्पन्न होने वाला,
नहीं होने वाला नहीं पाया जाता, यानी अन्यत्र कर्मों की अच्छा, कोई ना कोई अपेक्षा लगती ही लगती है अन्य गुण स्थानों में, किसी कर्म का उदय सूक्ष्म कुछ ना कुछ लगेगा ही लगेगा। सासादन में जैसा लगता है वहाँ कोई नहीं है भाव उनका, वैसा नहीं होता अन्य किसी गुण स्थान में। अब 198 पेज पर सम्यक मिथ्या दृष्टि में ऊपर पढ़ना, सम्मा मिथ्या दिप्ति को भावो खवो व समयो भावो। सम्यक मिथ्या दृष्टि यह कौन सा भाव है, क्षयोक्षमिक भाव है। अभी शंका, क्षयोक्षमिक की परिभाषा मालूम है,
वर्तमान कालीन
सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये तो इन जनरल क्षोभम की परिभाषा है। अब यहाँ दर्शन मोहनी में क्या है, अनादि से एक मिथ्यात्व प्रकृति है जो सर्वघाती है, किसका घात करती है तो सम्यक्त्व का पूरा घात करती है। जब पहली बार प्रथम उपशम प्राप्त होता है तो मिथ्या तो में से ही दो प्रकृतियां और तैयार होती है, अनुभाग घटकर, तो उसको कहेंगे सम्यक मिथ्या तो और सम्यक प्रकृति। ये कैसी है, नहीं सम्यक मिथ्या तो ये सर्वघाती है, केवल सम्यक प्रकृति ही देशघाती है। यहाँ तक बात आई, अब यहाँ इसलिए शंकाकार पूछ रहे हैं, प्रतिबंधी कर्म के उदय होने पर भी जीव के गुण का जो अवयव यानी अंश पाया जाता है वह गुणांश क्षयोक्षमिक कहलाता है। क्षयोक्षमिक की परिभाषा क्या थी कि प्रतिपक्ष कर्म का उदय है और यहाँ जीव का वो गुण भी थोड़ा प्रकट है। जैसे हम मति ज्ञानावरण में लगाते हैं, हमें मति श्रुत ज्ञान चल रहा है तो मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण का वहाँ क्षयोक्षम चल रहा है, उसका यानी उदय है देशघाती का, फिर भी हमारा वो गुण प्रकट है यानी उसका अंश प्रकट है। तो यही पूछ रहे अभी शंका में कि प्रतिबंधी कर्म के उदय होने पर भी जीव के गुण का जो अवयव यानी अंश पाया जाता है वह गुणांश शव समय कहलाता है, क्योंकि गुणों के संपूर्ण रूप से घातने की शक्ति का अभाव क्षय कहलाता है। और क्षय रूप ही जो उपशम है वह क्षोपशम कहलाता है। हमने देखा ना संपूर्णपणे घातने की शक्ति ने सर्वघाती, उसका अभाव है, वो अभाव को ही क्षय कहा, जिसको उदयाभावी क्षय कहा। उदय का अभाव ही क्षय कहलाता है। परंतु उदय किस रूप से है? देशघाती होकर वो टर्न होकर उदय में, प्रदेशों का उदय चल रहा है, उस अनुभाव का उदय नहीं है। परमाणु तो फिर रहे हैं परंतु उनका अपने रूप से उदय का अभाव है, उसको उदयाभावी क्षय कहा। उस क्षोभशम में उत्पन्न होने वाला भाव क्षोभशम में कहलाता है। यहां तक उन्हें स्टेटमेंट कर दिया, अभी शंका करके शंका चल रही है। किंतु सम्यक मिथ्या तो कर्म के उदय रहते हुए सम्यक तो की कणिका भी अवशिष्ट नहीं रहती, क्योंकि वो सर्वघाती है, सम्यक तो का पूरा घात करती है। अन्यथा सम्यक मिथ्या तो कर्म के सर्वघातीपना बन नहीं सकता, वो सर्वघाती है, इसलिए सम्यक मिथ्या तो क्षौक्षमिक है यह कहना घटित नहीं होता। यानी वहाँ जीव का प्रतिपक्षी गुण कोई प्रकट नहीं है और फिर भी उसको आप क्षौक्षमिक क्यों कह रहे, ये उनका प्रश्न है। समाधान, यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं। सम्यक मिथ्या तो कर्म के उदय होने पर श्रद्धान अश्रद्धानात्मक करंचित अर्थात शबलित या मिश्रित, तीन शब्द लगे, करंची व जीव परिणाम, करंची का अर्थ होता है करंचित अर्थात शबलित या मिश्रित जीव परिणाम उत्पन्न होता है, उसमें जो श्रद्धानांश है वह सम्यक्त्व का अवयव है, उसे सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय नष्ट नहीं करता है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व क्षौक्षमिक भाव है। बहुत अच्छा दिया, क्योंकि जीव का कुछ गुण प्रकट रहता है ना, तो कहते वहां हमने कहे सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व का थोड़ा अंश बाकी है और मिथ्यात्व भी है ही वहां पर। श्रद्धा श्रद्धानात्मक ऐसा मिला जुला परिणाम है, और जो श्रद्धानांश है वह सम्यक का अवयव है। शंका, अश्रद्धान भाग के बिना केवल श्रद्धान भाग की ही सम्यक मिथ्यात्व यह संज्ञा नहीं है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व भाव क्षौक्षमिक नहीं है। अकेला सम्यक का अंश ऐसा नहीं है, मिथ्यात्व का भी तो अंश है ही वहां पर। समाधान, उक्त प्रकार की विवक्षा होने पर सम्यक मिथ्यात्व भाव क्षौक्षम भले ही न होवे, यानी विवक्षा अगर बदलते हैं तो वो उसको नहीं भी कहेंगे, किंतु अवयवी के निराकरण और अवयव के अनिराकरण की अपेक्षा वह क्षौक्षमिक है। अर्थात सम्यक मिथ्यात्व के उदय रहते हुए अवयवी रूप कहा नहीं तो वह निराकरण रहता है, किंतु सम्यक तो गुण का अवयव रूप अंश प्रकट रहता है। इस प्रकार अवयवी यानी अंश है, इसलिए उसको अवयव कहा, पूरा सम्यक तो नहीं है, अवयव नहीं है, पर अवयवी यानी अवयवी है सम्यक तो, और उसका अंश यानी अवयव। तो यहाँ फिर पढ़ते हैं इसको, उस प्रकार की विवक्षा होने पर सम्यक मिथ्यात्व क्षौक्षमिक भले ही न होवे, किंतु अवयवी के निराकरण, अवयवी यानी सम्यक्त्व, सम्यक्त्व तो नहीं रहा और अवयव यानी सम्यक्त्व का अंश उसका तो अनिराकरण है क्योंकि वो तो मौजूद है वहाँ, सम्यक्त्व का कुछ श्रद्धा का कुछ अंश मौजूद है, अपेक्षा वक्ष औक्षमिक है। अर्थात सम्यक मिथ्यात्व के उदय रहते हुए अवयवी रूप कहा नहीं, यानी वो सम्यक दृष्टि नहीं कहा उसका, अवयवी रूप यानी सम्यक दृष्टि नहीं कहा उसको, तो वह निराकरण रहता है। किंतु सम्यक्त्व गुण का अवयव रूप अंश प्रकट रहता है, इस प्रकार क्षौक्षमिक भी वह सम्यक मिथ्यात्व द्रव्य कर्म सर्वघाती ही होवे। क्या कहते हैं, ये सम्यक मिथ्यात्व जो द्रव्य कर्म है वो कैसा है, तो सर्वघाती है, क्योंकि जात्यंतर्भूत यानी अन्य जाति का सम्यक मिथ्यात्व के सम्यक्त्वपने का अभाव है, यानी वो सम्यक्त्व नहीं रहता है, इसलिए उसको हम सर्वघाती ही कहेंगे। सम्यक मिथ्यात्व जो द्रव्य कर्म है, प्रकृति है, प्रकृति की बात चल रही है, उसको देशघाती कहेंगे कि सर्वघाती, तो वो है तो सर्वघाती ही, वो प्रकृति सर्वघाती कहेंगे क्योंकि वहाँ सम्यक्त्व नहीं रहा, इस अपेक्षा से प्रकृति को सर्वघाती कहेंगे, उसका उदय है तो सम्यक्त्व छूट गया। किंतु श्रद्धान भाग अश्रद्धान भाग नहीं हो जाता है, क्योंकि श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों में एकता का विरोध है, यानी सम्यक्त्वपना नहीं रहा, आपके थोड़ा मिथ्यात्व थोड़ा, तो कहते वो दोनों का एक साथ नहीं हो सकता। और श्रद्धान भाग कर्मोदय जनित भी नहीं है, जितना श्रद्धान है वो कर्म के उदय से नहीं है, क्योंकि इसमें विपरीतता का अभाव है, और न उनमें सम्यक मिथ्यात्व संज्ञा का ही अभाव है, यानी वहां सम्यक मिथ्यात्व संज्ञा यूटिलाइज होती है, क्योंकि समुदायों में प्रवृत्त हुए शब्दों की उनके एक देश में भी प्रवृत्ति देखी जाती है, इसलिए यह सिद्ध हुआ सम्यक मिथ्यात्व क्षौक्षमिक भाव है। ये सब न्याय की भाषा है ना उसमें, यानी उसके क्या दोष आता है, क्यों नहीं आता है, वो सब चर्चा करें। कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि, यानी दूसरी प्रकार से क्षौक्षमिक भाव क्यों है उसको बता रहे हैं, मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, जिसको हम उदयाभावी क्षय कहते हैं, उन्हीं की सदवस्था रूप उपशम से सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, क्योंकि उसका भी उदयाभावी क्षय है, भले वो देशघाती उसका भी उदय नहीं है, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से अथवा अनुदय रूप उपशम से, सदवस्था रूप उपशम कहो, अनुदय रूप उपशम कहो, और सम्यक मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से सम्यक मिथ्यात्व भाव होता है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व का क्षौक्षमिकपना सिद्ध होता है। किंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता, क्यों नहीं, क्योंकि वो सर्वघाती का उदय है और वो इसलिए उसको क्षौक्षमिक भाव नहीं कहा है, मिथ्यात्व नहीं जाएगा तो भी ऐसा ही कहना पड़ेगा कि सम्यक मिथ्यात्व तो सर्वघाती है, सम्यक प्रकृति देशघाती है, उनका उदयाभावी क्षय है और मिथ्यात्व का उदय है, तो दो प्रकृति का उदय नहीं है, एक का उदय है, तो वहां पर भी क्षौक्षम घटित करो मिथ्यात्व का, तो ऐसा नहीं है, इसलिए इसको ये उसका रीजनिंग नहीं है। हाँ, वहां पोजीशन क्या है पूछेंगे तो बताएंगे कि दो का उदय नहीं है और एक का उदय है, परंतु क्षौक्षमपना किस अपेक्षा घटित किया, श्रद्धान अश्रद्धान की अपेक्षा, श्रद्धान का कुछ अंश अभी पूरा नष्ट नहीं हुआ, बस इतनी अपेक्षा, भावों की अपेक्षा से घटित हुआ। तो कहते किंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर तो मिथ्यात्व भाव के भी क्षौक्षमिक पने का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से, और सम्यक तो देशघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से अथवा अनुदय रूप उपशम से तथा मिथ्या तो के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से मिथ्या तो भाव की उत्पत्ति पाई जाती है, तो उसको भी क्षोभसम कहना पड़ेगा। दो का उदय ने एक का है इसलिए, परंतु ऐसा तो है नहीं, इसलिए वहां पर दर्शन होने का वो मिथ्या तो का उदय है उसको उदय में ही ले लिया है। अब नया सूत्र पढ़ेंगे। असंयत सम्मान इच्छित्ति को भावो वह समयो वा कयो वा खवो समयो वा भावो। असंयत समय दृष्टि यह कौन सा भाव है? औपशमिक भाव भी है, क्षायिक भाव भी है और क्षायोपशमिक भाव भी है, यानी वो गुणस्थान कौन सा भाव है ये पूछ रहे हैं। वो गुणस्थानों में कौन कौन से भाव है ऐसा नहीं पूछ रहे, ये गुणस्थान किस अभाव की अपेक्षा से हुआ है, यहाँ दर्शन मोहिनी की अपेक्षा लग रही है। हमने देखा पहले चार गुणस्थानों में दर्शन मोहिनी की ही अपेक्षा लगानी। आप कहेंगे वहाँ ज्ञान का क्षोभसम भी चल रहा है, पारिणामिक भाव है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। गुणस्थान का विभाजन किस अपेक्षा से पहले चार गुणस्थानों में दर्शन मोहिनी का सद्भाव सद्भाव ऐसा ही लेना है। गुणस्थानों का विभाजन इसी कारण होता है, मोह और योग के निमित्त से। मोह में दर्शन मोहिनी के निमित्त से पहले चार गुणस्थान, चारित्र मोहिनी के निमित्त से आगे वाले बारह, और फिर अयोग, योग तो है ही नहीं, है या नहीं है, ये गुणस्थान की परिभाषा है ना। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण में होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। इसमें ये चारित्र की तारतम्य रूप अवस्थाओं को होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। तो यहाँ पूछते असंयत समय दृष्टि, ये चौथा गुणस्थान का नाम है, तो ये कौन सा भाव है? तो जिसके औपशमिक समय को है किसी को, यानी वो दर्शन मोहिनी का क्या है वहाँ पर, उपशम हो सकता है, क्षय हो सकता है, क्षोभसम हो सकता है, तो तीनों भाव वहाँ घटित करेंगे। यहाँ लिखा ना कौन सा भाव है, औपशमिक भाव भी है, क्षायिक भाव भी है, क्षोभसमिक भाव भी है। जैसे एक समय एक जीव को वो नहीं होगी, अन्य अन्य नाना जीवों की अपेक्षा बताएं, कोई एक ही प्रकार का सम्यक तो एट ए टाइम होगा। जैसे मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के, देखो ये प्रकृतियां ऐसे, वो सर्वघाती प्रकृति उसके स्पर्धक भी सर्वघाती, सम्यक प्रकृति देशघाती है, पर अन्यत्र जो नियम किया था कि देशघाती प्रकृति में भी सर्वघाती देशघाती होते, वो नियम यहां नहीं लगता, क्योंकि ये बंधने वाली प्रकृति नहीं थी, नई तैयार हुई प्रकृति है। दर्शन मोहिनी में ये विशेषता कि सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति देशघाती प्रकृति होने पर भी उसमें सर्वघाती और देशघाती दोनों नहीं होते, नहीं। जैसे अन्यत्र होते मति ज्ञानावन शुद्ध ज्ञानावन सब में देखा था हमने, सम्यक प्रकृति ऐसी प्रकृति है देशघाती, उसमें सभी स्पर्धक देशघाती ही होते। उस प्रकृति देशघाती है और उसके स्पर्धक भी देशघाती। हाँ, सभी अन्य जो देशघाती प्रकृतियों में, हाँ अन्य देशघाती प्रकृति कौन सी, मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण वो अंतराय की जो कुछ है सब में दोनों पाए जाते हैं। देखो फिर पढ़ते हैं इसको 200 नंबर के पृष्ठ पर। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के तथा सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदयाभाव रूप लक्षण वाले उपशम से उपशम सम्यक तो उत्पन्न होता है, यानी औपशमिक सम्यक तो है उसमें तीनों ही उपशमित है ये कहना चाहते हैं। इसलिए असंयत सम्यक दृष्टि यह भाव औपशमिक है। इन्हीं तीनों प्रकृतियों के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव को क्षायिक कहते हैं। आप कहेंगे अनंतानुबंधी का भी क्षय है, पर हमारी अपेक्षा दर्शन मोहिनी की चल रही है, अन्य का क्या है हाल उसकी अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, तो तीनों का क्षय पाया जाता है वहाँ क्षायिक भाव। देखो देखो पहला उपशमिक समय तो कहा तीनों ही का उपशम है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तीनों का उपशम है, औषमिक समय, तीनों का क्षय है क्षयिक समय। ये क्षयिक समय तो नहीं कहते, असंयत समय दृष्टि का क्षयिक भाव है ऐसा कहते। अब सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय के साथ रहने वाला सम्यक परिणाम क्षौक्षमिक कहलाता है। यानी उसके साथ ये सम्यक परिणाम तो तीनों में है, क्योंकि असंयत समय दृष्टि है परंतु कहीं उस कर्मों का उपशम चल रहा है, कहीं उसका क्षय है और कहीं उसका क्षौक्षम है, तो वैसा वो भाव कहेंगे वहां पर। अब यहाँ पोजीशन क्या है देखो, मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों के उदया भाव रूप क्षय से, उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से, यानी उदय का तो अभाव है उसी को क्षय कह रहे हैं, परंतु सत्ता में तो पड़े, दूसरे तीसरे आदि सभी निषेकों में पड़े हैं, उसको सदवस्था रूप उपशम कहेंगे। और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से तथा उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से, अथवा अनुदोपय अनुदयोपशमन से, अनुदय उपशमन यानी उदय नहीं होना उसी को कहेंगे सदवस्था रूप उपशम, सत्ता में पड़े रहना। और सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय से, केवल हम सम्यक प्रकृति के उदय से कहेंगे तो वो है ही देशघाती, उसमें कोई सर्वघाती है ही नहीं। क्षौक्षमिक भाव कितने ही आचार्य कहते हैं किंतु यह कथन घटित नहीं होता, क्योंकि वैसा मानने पर अतिव्याप्ति दोष का प्रसंग आता है। शंकाकार कहते तो फिर क्षौक्षमिक भाव कैसे घटित होता है? समाधान, यथास्थित अर्थ के श्रद्धान को घात करने वाली शक्ति जब सम्यक प्रकृति के स्पर्धकों में क्षीण हो जाती है तब उनकी क्षय संज्ञा है। क्षय को प्राप्त हुए स्पर्धकों के उपशम को अर्थात प्रसन्नता को क्षोक्षम कहते हैं। उससे उत्पन्न होने से वेदक सम्यक तो क्षौक्षमिक है, यह कथन घटित हो जाता है। इस प्रकार के सम्यक्त में तीन भाव होते हैं, इस प्रकार सम्यक्त में तीन भाव होते हैं, अन्य भाव नहीं होते। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, क्षौक्षमिक भाव कैसे घटित होता है? श्रद्धान को घात करने वाली शक्ति सम्यक प्रकृति के स्पर्धकों में क्षीण हो जाती है, क्षय को प्राप्त हुए उपशम को खयाणम हुए समो प्रसन्नदा कवो समो,
ये दूसरा, ये क्षय को प्राप्त हुए स्पर्धकों के उपशम को वो क्या कहना चाहता है वो समझ में नहीं आया।
यानी वो शक्ति का, शक्ति नष्ट होकर सम्यक प्रकृति उत्पन्न हुई है ना,
ये क्षय को प्राप्त वो शक्ति,
मुझे भी पता बराबर नहीं अर्थ ख्याल में आया। नहीं नहीं नहीं, सम्यक प्रकृति में सब घटित हो रहे हैं, इन्हें एक सम्यक प्रकृति पर वो सब घटित कर रहे हैं। यानी सम्यक प्रकृति में देखो देखो, अर्थ के श्रद्धान को घात करने वाली, यानी जैसे मिथ्यात्व में अर्थ के श्रद्धान को घात करने की शक्ति है, परमाणु में तो पड़ी थी, अब उस शक्ति इनमें क्षीण हो चुकी है, स्पर्धकों में इनमें नहीं रही है, उसी को यथास्थित अर्थ है, जैसे तत्वार्थ श्रद्धान, यथास्थित अर्थ पैदार्थ जैसे है वैसा उसका श्रद्धान, उसको यथास्थित अर्थ यानी हम कहेंगे प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान, उसको घात करने की शक्ति जब सम्यक प्रकृति के स्पर्धकों में क्षीण हो जाती है, उसको यहाँ क्षय कहा। क्षय और उपशम क्यों कहा वो बात बता रहे हैं। यानी जैसा है वैसा श्रद्धा, जो का त्यों श्रद्धा, प्रयोजनभूत सात तत्वों का जो का त्यों श्रद्धा, यथास्थित श्रद्धा। हम समय को किसको कहेंगे? सात तत्वों की श्रद्धा को समय को कहें
तो वहाँ पे तो है ना।
नहीं नहीं, समय को किसको कहना उसकी बात है। तो ऐसे सम्यक्त को घात करने वाली शक्ति सम्यक प्रकृति के स्पर्धकों में नहीं रही। सम्यक प्रकृति के स्पर्धक सम्यक्त को घात नहीं कर सकते, ये उसका सरल लक्ष्य है। उसी को यहाँ क्षय और उपशम उसी पर घटित कर रहे हैं। यहाँ क्या कहना चाहते, कुछ अलग अपेक्षा ले रहे हैं। मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो पड़े, सम्यक प्रकृति का उदय ऐसा तो हम कहते आए और ऐसा ही सब जगह घटित भी किया है। यहाँ कुछ अलग अपेक्षा क्या बता रहे, सम्यक प्रकृति अकेली में ही क्षय और उपशम बता रहे। सम्यक प्रकृति जो है उसमें जो सम्यक्त को नष्ट करने वाली जो शक्ति पहले थी मिथ्यात्व में, वो अभी नष्ट हो चुकी है। यहाँ लिखा ना, क्षीण हो जाती है, उसी को क्षय कहा। और क्षय को प्राप्त हुए स्पर्धकों के उपशम को अर्थात प्रसन्नता को क्षोपशम कहते हैं। यानी वो क्षय को प्राप्त हुए, यानी वो सम्यक्त को घात करने वाली शक्ति नष्ट हुई है और ऐसे स्पर्धकों का ही उदय हो रहा है। यहाँ उपशम का अर्थ कुछ अलग कर रहे।
तो यहाँ पे क्षय को प्राप्त हुए स्पर्धक को तो हम लोग मिथ्यात्व को लेना है। क्षय को प्राप्त हुए स्पर्धकों के उपशम को, क्योंकि तीनों प्रकृति
यहाँ केवल सम्यक प्रकृति की बात है, अन्य दो प्रकृतियों की चर्चा ही नहीं है। यहाँ कहते हैं क्षय को प्राप्त हुए स्पर्धक है, सम्यक प्रकृति के स्पर्धक कैसे है कि उनमें से वो मिथ्यात्व का अंश नष्ट हो चुका कहेंगे, या सम्यक्त को घात करने की शक्ति नष्ट हो गई है। तो वो मिथ्यात्व से आई हुई प्रकृति, उसको सम्यक्त का घात करने के स्पर्धक अभी नहीं हुए, क्षय उसको प्राप्त हुआ। और ऐसे क्षय को प्राप्त हुए स्पर्धकों का
उपशम बताया, इसलिए मैंने
ये उपशम है ना, वो प्रसन्नता के अर्थ में उपशम लिया है। उपशमित होने के अर्थ में उपशम शब्द नहीं लिया, प्रसन्नता के लिए उपशम शब्द लिया है। यानी उसी का अभी वहाँ उदय चल रहा है ना, उसी का। उसमें उत्पन्न होने से वेदक समय को क्षौक्षणिक है, यह कठिन घटित हो जाता है। उनको एक विवक्षा विशेष ली है, एक अकेले समय प्रकृति पर भी यह क्षौक्षम घटित किया है। सामान्य से क्षोक्षम कैसे कहते हैं, देशघाती के उदय भी लेते हैं ना वैसे, तो यहाँ क्षीण होकर वो उदय में आ रहे हैं, इस तरह से उसका अर्थ लेना है, बस इतना ही लेना। शंका, असंयत समय दृष्टि में गति लिंग आदि भाव पाए जाते हैं। ये गति लिंग ये कौन से भाव है उदय, तो वो तो है ना वहां पर, तो यहाँ उदय को क्यों नहीं लिया, उपशमिक क्षायिक और क्षौपमिक को लिया है, फिर उनका ग्रहण यहाँ क्यों नहीं किया। असंयत समय दृष्टि में भले ही गति लिंग आदि भावों का अस्तित्व रहा आवे, किंतु उनसे सम्यक तो उत्पन्न नहीं होता, इसलिए समय दृष्टि भी औदयिक आदि भावों के व्यपदेश को नहीं प्राप्त होता। यानी औदयिक आदि भाव उसके ये जो असंयत समय दृष्टिपना उनके कारण नहीं हुआ है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। यानी उस गुणस्थान में कौन कौन से भाव है वो बात अलग, ये गुणस्थान कौन सा भाव है ये पूछा था। अब दूसरी अपेक्षा बता रहे, उदयेन भावेन पुनः असंजदो। अभी सम्यक दृष्टि लिया ना, नाम क्या है, असंयत सम्य दृष्टि, असंयत और सम्य दृष्टि। सम्य दृष्टि क्यों है तो उसके तीन भाव बताए, असंयतपना क्यों है उसका भी भाव बताएंगे, क्योंकि असंयम ये औदयिक भाव है और नाव पूरा असंयत और समय दृष्टि है, इसलिए यहाँ कहेंगे उदयन भावे न पुनः असंयत। फिर से देखो पहला सूत्र क्या था, असंयत समय दृष्टि कौन सा भाव है। तो असंयत समय दृष्टि में उन्होंने पहले वो सब घटित किए, कौन से
शैक्षणिक
ऑप्शन। अब यहाँ कहें तो उसमें असंयत भी शब्द आ गया है, तो उसकी अपेक्षा कहेंगे वो असंयत है। किंतु असंयत समय दृष्टि का असंयतत्व औदयिक भाव से, पहले असंयत समय दृष्टि कौन सा भाव है, जो तीनों भाव घटित किए, परंतु कह के उसमें जो असंयत पना है, समय दृष्टि तो है असंयत पना के वो आता है, क्योंकि हमने देखा था ये तो औदयिक भाव में असंयम को गिना है था हमने, मिथ्यात्व अज्ञान असंयम असिद्धत्व चार एक एक वाले थे ना। असंयत समय दृष्टि का असंयत तत्व औदयिक भाव से, असंयत तत्व यानी असंयत पना, असंयत तत्व, असंयत्व कहाँ है, असंयत तत्व क्या है, बरोबर है बराबर, पढ़ो उसको, असंयत्व कहाँ है,
असंयत्व
आगे त्व लगाए ना, असंयत्व वृद्ध के बाद त्व लिखते हैं, वृद्धत्व असंयतत्व, असंयत्व असंयतपना, त्व का अर्थ पना, असंयतपना क्यों है, औदयिक भाव से। सम्यक दृष्टि के तीनों भाव कहते हैं, वो सम्यक दृष्टि कौन से भाव किससे है वो बताया, असंयत के उसके असंयत तत्व की अपेक्षा कौन सा भाव होता है, इस बात के बतलाने के लिए यह सूत्र आया है। असंयतपना, असंयत तत्व नहीं कह रही मैं, असंयतत्व, असंयत पूरा त लिखो त्व, क्योंकि संयम के घात करने वाले कर्मों के उदय से, अनेक कर्म है ना, कर्मों के उदय से यह असंयत रूप होता है, इसलिए असंयत यह औदयिक भाव है। अभी शंका कर छोड़ेंगे नहीं, उन नीचे के भी गुणस्थान सारे असंयत पना के थे ना, अधस्थान गुणस्थान अधस्थान है नीचे के, पहले दूसरे तीसरे, क्योंकि चौथे तक तो असंयत पना है, तो अधस्थान गुणस्थानों के असंयत पने को, पना लिखा ना स्व के बदले पना शब्द डाला, औदय क्यों नहीं कहा, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसी सूत्र से उन अधस्थन गुणस्थानों के औदयिक असंयत भाव की उपलब्धि होती है, यानी जहाँ वो असंयत पना है उन सब में असंयत पने के लिए औदयिक भाव लगता है। चूंकि यह सूत्र अंत दीपक है, यह अंत दीपक समझते क्या है, ये तो तीन शब्द आते हैं, एक आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। देखो जो ऐसा है, हमारा एक बड़ा हॉल है ऐसा कॉरिडोर है, और वहाँ हम गए, अंधेरा था तो वहाँ तो अलग अलग जगह पर लाइट्स लगे हुए, तो हमने पहला बटन लगाया शुरुआत का, तो यहाँ के ट्यूबलाइट पर पूरे कॉरिडोर में उसका प्रकाश आता है, तो आदि स्टार्टिंग वाला दीपक, दीपक है ना वो प्रकाशित करने वाली चीज, ऐसा भी हो सकता है हमने वो मिडिल वाला ही बटन लगाया उसका भी प्रकाश यहाँ से वहाँ तक फैला, एकदम लास्ट वाला लगाया केवल तो भी उसका प्रकाश सर्वत्र फैला, तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं एक बार कहने से वो सर्वत्र लागू होते हैं, उसको कहेंगे आदि दीपक। कोई ऐसे होते बीच में बताया जाता है उसका वो रेफरेंस आगे पीछे सर्वत्र लेते हैं, कोई होता है अंत दीपक लास्ट में बताए परंतु उसका पहले से सर्वत्र उसको लागू होता है, ऐसा कोई मालूम है अंत दीपक, नमो लोए सौ सावन, तो लोए और सौ शब्द, क्योंकि नमो अरिहंतानम, नमो तो लिखा है, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वोझायानम, नमो लोए सौ, ये लोए सौ लोक के सभी, तो साधुओं को ही लोक के सभी कहा, तो अरिहंत भी लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार, ये सर्वत्र वो लागू होता है, इसलिए उसको कहेंगे अंत दीपक। यहाँ असंयत ये शब्द अंत दीपक है, पहले चार गुणस्थानों में असंयत ये यहाँ का अंतिम गुणस्थान है असंयत पने का, और सम्य दृष्टि पने का पहला गुणस्थान है। ऐसे प्रमत्त संयत, प्रमत्त ये अंत तक है, छठे तक प्रमत्त है, और संयतों में ये पहला गुण स्टार्टिंग है, समझ रहे हैं, ऐसे वो नाम पड़े जाते हैं। इसलिए कहते हैं यह सूत्र अंत दीपक है, इसलिए असंयत भाव को अंत में रख देने से वह पूर्वोक्त सभी सूत्रों का अंग बन जाता है, यानी सभी हुए असंयत पना है तो ये सर्वत्र असंयत भाव ये औदयिक सिद्ध हो जाता है, अथवा अतीत सूत्रों में अपने अस्तित्व को प्रकाशित करता है, इसीलिए यानी वो असंयत पना सब जगह है, इसीलिए इसी दीर्घ चाहिए, सभी अतीत गुणस्थानों का असंयम भाव औदयिक होता है यह बात सिद्ध हुई। अब शंकाकार पूछते हैं यह असंयत पद आदि में न कहकर यहाँ पर कहने का क्या अभिप्राय है, पहले बता देते ना समाधान, यहाँ तक के गुणस्थानों के असंयम भाव की अंतिम सीमा बताने के लिए और ऊपर के गुणस्थानों के असंयम भाव का प्रतिषेध करने के लिए यह असंयत पद यहाँ पर कहा है। अब संजदा संजद पमत्त अपमत्त संजदाति को भावो खवो व समीवो भावो संयता संयत प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत यह कौन सा भाव है, औपशमिक भाव है। तो मेरा प्रश्न है कि पांचवें छठे सातवें क्षायिक और औपशमिक नहीं हो सकते, केवल औपशमिक लिया
ये चारित्रमों।
अभी चारित्रमों की अपेक्षा लगेगी, अभी दर्शनमों की नहीं लगेगी, हमेशा ऐसा है सम्यक और संयमा संयम एक साथ प्राप्त किया, वो सम्यक तो उसने प्राप्त है, ये सारे सम्यक के साथ ही है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ये शब्द चौथे में आ गया, वो आदि दीपक है, वो सर्वत्र लगेगा, बताने की जरूरत नहीं है उसका, ख्याल में आई बात। परंतु ये जो भाव है वो चारित्र मोह की वहां विशेष पोजिशन है, इसे वो भाव कौन सा है तो क्षौक्षण है, चूंकि क्षोक्षम नामक चारित्र मोहनी कर्म का उदय होने पर संयता संयत प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयतपना उत्पन्न होता है, ऐसा क्या भाषांतर हुआ है, चारित्र मोहनी कमोदय सौ समय संते, ऐसा कुछ लगता है कि चारित्र मोह कर्म के उदय में एक सूक्ष्म संज्ञा होने पर शोषण नामक कोई चारित्र मोहनी नहीं है, यानी चारित्र मोहनी का कैसा उदय शोषण वाला उदय है ऐसा होने पर, ये उसका अर्थ लेना
चारित्र मोहनी पहले ले,
देखो ऐसा है चारित्र मोहनी का शोषण नामक उदय होने पर ऐसा उसका कुछ
वो शब्द पीछे ले जाना पड़ेगा,
संयता संयत प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयतना उत्पन्न होता है, इसलिए तीनों ही भाव क्षौक्षमिक है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के उदय में तथा संज्वलन चतुष्क और नौ नौ कषायों के उदय में सर्व प्रकार के चारित्र विनाश करने की शक्ति का अभाव है, इसलिए उनके उदय की क्षय संज्ञा है, यानी पूर्णा उसका नाश नहीं कर सकता। उन्हीं प्रकृतियों की उत्पन्न हुए चारित्र को अथवा श्रेणी को आवरण नहीं करने के कारण उपशम संज्ञा है, यानी उन्हीं प्रकृतियों की उपशम संज्ञा है। क्यों? क्योंकि जो उत्पन्न है चारित्र उसको वो आवरण नहीं कर सकता, इसलिए उसको उपशम कहा। क्षय और उपशम इन दोनों के द्वारा उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों भाव भी क्षौक्षमिक हो जाते हैं। देखो यहाँ फिर भी उपशम का अर्थ क्या लिया उन्होंने, उत्पन्न हुए भाव को वो आवरण नहीं डाल सकता। वहां पर भी सम्यक प्रकृति ने ऐसा उपशम का अर्थ प्रसन्नता अर्थ किया था, यहाँ भी वही अर्थ में यूज कर रहे। देखो फिर से थर्ड लाइन से प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के उदय में, अभी पांचवें गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण संज्वलन दोनों का उदय है तथा संज्वलन चतुष्क, यानी वहां क्या क्या उदय है पांचवें में? प्रत्याख्यानावरण है, संज्वलन है, नौकषाय, यानी उनमें चारित्र का पूरे शक्ति नाश करने का शक्ति नहीं है, यानी कुछ ना अनुमात्र तो ये थोड़ा तो प्रकट है ना, जिसको हम देश संयम है थोड़ा प्रकट है, पूरा नाश करने के लिए समर्थ नहीं। ये शक्ति का अभाव है, उसी को क्षय कहा। जैसे वहां पर भी दर्शन अभी जो उन्होंने परिभाषा बताई थी सूक्ष्म की, सम्यक प्रकृति पर लगाई थी उन्होंने, सम्यक का घात करने वाले स्पर्ध को उनकी शक्ति का क्षय बताया था, यहाँ पर भी यही बता रहे कि चारित्र के पूर्ण विनाश करने की शक्ति का अभाव है, यानी सर्व प्रकार का चारित्र ने सकल यानी पूरा ही नाश करे, थोड़ा भी प्रकट नहीं हो, ये बात नहीं हो सकती, ऐसे उदय को क्षय कहा। और उन्हीं जो प्रकृतियां है वो जो उत्पन्न जो चारित्र हुआ है उसका आवरण नहीं करने के कारण उपशम संज्ञा कहते हैं इसको। श्रेणी का अर्थ क्या किया यहाँ पर? वही है ऊपर क्या लिखते हैं देखो, तेसिम चेव उत्पन्न चारित्रम सेरिम वारंतस्य उत्पन्न चारित्रम सेढ़िम वा अवारंतस्य आवरण यानी जो उत्पन्न चारित्र जो चारित्र उत्पन्न हुआ है उसी को यहाँ कुछ श्रेणी बताई है, उसको आवरण नहीं कर सकता इसलिए उसको उपशम संज्ञा कहते हैं, यानी जो घात नहीं करना उसी को यहाँ उपशम संज्ञा, जिसका उदय है वो घात नहीं करता उसी को उपशम कह रहे हैं।
श्रेणी का अर्थ संयम लेना नहीं,
जितना जितना हाँ, जितना प्रकट है उसी को श्रेणी कहा। यहाँ पर क्षय और उपशम इन दोनों के द्वारा उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों भाव भी सौक्षमिक हो जाते हैं, जैसे सम्यक प्रकृति पर अकेले पर घटित किया है वैसे यहाँ पर लेना है, पूरा घात नहीं करता वही क्षय कहेंगे उदय वाला, और जो जो माइल्ड उदय चल रहा है उसी को उपशम कहा है। उसी को श्रेणी का जितना चारित्र प्रकट है ना, कौन सा देश चारित्र, यदि ऐसा माना जाए तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का सर्वघातीपना नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण का उदय है वो तो सर्वघाती है। समाधान, वैसा मानने पर भी प्रत्याख्यानावरण कषाय का सर्वघातीपना नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका उसका एक्चुअली क्या है, तो उसका प्रतिपक्षी कौन है? प्रत्याख्यानावरण शब्द कैसा तैयार हुआ है? पूर्ण सकल संयम प्रकट नहीं है, तो प्रत्याख्यानावरण में क्या किंचित प्रत्याख्यानवर आवरण डालता है, थोड़ा भी नहीं प्रकट होगा, और ये प्रत्याख्यान सकल संयम प्रकट नहीं होगा
संपूर्ण,
तो प्रत्येक क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कशा है, अपने प्रतिपक्षी सर्व प्रत्याख्यान यानी संयम गुण को घातता है, इसलिए वह सर्वघाती कहा जाता है। किंतु सर्व अप्रत्याख्यान को नहीं घातता है, क्योंकि उसका इस विषय में व्यापार नहीं है, इसलिए इस प्रकार से परिणत प्रत्याख्यानावरण कषाय के सर्वघाती संज्ञा सिद्ध है। जिस प्रकृति के उदय होने पर जो गुण उत्पन्न होता देखा जाता है, उसकी अपेक्षा वह प्रकृति सर्वघाती संज्ञा को नहीं प्राप्त होती। देखो क्या बहुत अच्छी बात बताई, क्या कहना चाहते हैं, आवरण यानी सर्वघाती किस अपेक्षा से कहा, वो मुनिपना नहीं होने देता, ये सर्वघाती है, पर जितना प्रकट है उसकी अपेक्षा सर्वघाती नहीं कहते उसका। सर्वघाती किस अपेक्षा से कहा, संयम, संयम का सर्वघाती, देश संयम का सर्वघाती नहीं है। यदि ऐसा न माना जाए तो अति प्रसंग दोष आ जाएगा।
तो पांचवें गुण स्थान में अंशिक मुनि पढ़ा प्रकट है, उसको बताना चाहते
क्या क्या
पांचवें गुण स्थान में अंशिक मुनि पढ़ा,
अंशिक मुनि पढ़ा किसने कहा? आप कहीं पर रुके, देश संयम का अर्थ क्या है?
संयम नहीं था
यानी उनके अनुव्रत आदि है, वहां अंशिक मुनि है ऐसा कहां कहां? आप अंश केवल ज्ञानी हो कहो ना, केवल ज्ञान का अंश है उसमें क्या है, कहा भी है शास्त्रों में जो ज्ञान प्रकट है केवल ज्ञान का अंश है करके, पर वो पर्याय वाला केवल ज्ञान नहीं लेना, यहाँ संयम का अंश है ना, अनुमात्र वो किंचित है, ऐसी अपेक्षा लेना।
प्रकट नहीं होता इसलिए
देखो सभी जो सर्वघाती है वो सर्वघाती क्यों कहा, अपने प्रतिपक्ष को नहीं होने देता। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है, त्याग, और उसका आवरण डाल रहा है यानी वो पूरा त्याग नहीं होने देता, पर किंचित त्याग का वो प्रतिपक्ष नहीं है, किंचित त्याग का तो होने देता है, किंचित भी त्याग का प्रतिपक्षी कौन हुआ, अप्रत्याख्यान आवरण है, उसका यहाँ उदय नहीं है, वो प्रत्याख्यानावरण का उदय भविष्य है। प्रत्याख्यानावरण का यानी वो देश संयम के लिए वो सर्व देशघाती ही है, देश संयम तो होने देता है, उसके लिए वो सर्वघाती है ही नहीं है। सर्वघाती क्यों, अपने प्रतिपक्ष का घात करता है, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है क्या, देशघाती है, तो हमें आपको ज्ञान क्यों हो रहा है, किसके लिए? नहीं, किसके लिए सर्वघाती, केवल ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान नहीं होने देता है, मतिशुद्ध को रोकने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, प्रत्याख्यानावरण सकल संयम नहीं होने देता, देश संयम रोक नहीं सकता वो, ख्याल मेरी बात नहीं आई नहीं तो फिर सुनना पड़ेगा
नहीं अच्छा होगा, आपने पूछा मेरी मैं डरता हूँ अभी,
फिर से सुनना। देखो अनंतानुबंधी को भी सर्वघाती करते हैं, सम्यक्त्व का घात पूरा घात करता है, वो प्रत्याख्यानावरण को सर्वघाती क्यों कहते हैं, वो थोड़ा भी त्याग नहीं होने, यानी थोड़े त्याग के लिए सर्वघाती है, अनुव्रत के लिए वो सर्वघाती है, पर सम्यक्त्व के लिए वो सर्वघाती नहीं है, सम्यक्त्व तो होने देता है, उसमें क्या है, अब अप्रत्याख्यान हो गई, अभी प्रत्याख्यान आ गया। प्रत्याख्यान का आवरण करता है, यानी प्रत्याख्यान नहीं होने देता है। वो किसके लिए सर्वघाती है? संयम के लिए सर्वघाती है। देश संयम के लिए वो सर्वघाती नहीं है। ख्याल है ना? ये सर्वत्र यही अपेक्षा ली। कहा द्विस्वभाव कैसे हुआ? बस इतने उसका कार्य है, होने देता है। नहीं, वो तो उसका, जब उसके अकेले का उदय होगा। पहले गुणस्थान में तो सबका है ना, उसका कार्य कब प्रकट होगा? जब उसके अन्य नहीं है, बस यही यही एक मुखिया रहेगा।
प्रत्याख्यान आवरण तो सर्वघाती है, और
किस अपेक्षा? सर्वघाती
संयम की अपेक्षा। पर पांचवे गुणस्थान में देशघातीकरण चालू हो जाता है, तो पांचवे गुणस्थान में जो प्रत्याख्यान आवरण का उदय होता है वो सर्वघात रूप होता है कि देशघात? देशघात
सकल संयम के लिए सर्वघात।
अच्छा,
उसमें भी जो देशघातीकरण होता है, यानी उसके भी अनुभव घटेगा कि नहीं घटेगा?
हाँ, जितना अनुभव कम हो जाएगा इतना।
जैसे मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति, सर्वघाती का उदय नहीं हम कहेंगे, परंतु जितना जैसे ज्ञान नहीं है उसके लिए वो तो औदयिक रूप से उसको सर्वघाती देशघाती, उसके भी बहुत सारे भेद हो गए ना देशघाती के। जैसे पांचवें गुणस्थान अभी अभी जो पांचवें में आया है, और अभी वो फिल्ल का इलक के पदवी पर है, उसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं? तो उसमें उसका अनुभव की अपेक्षा बताना है, उसका मंद मंद होते चला जाता है। यानी यहाँ सर्वत्र यही एक ही प्रकृति पर ही वो बात घटित थी।
तो जो जीव ज्यादा टाइम पांचवें गुणस्थान में रहता है, उसको ये प्रतिमा का बढ़ना होता है नियम से कि नहीं? खाली भी
आप ही उत्तर दे।
नहीं होता है
उनका एक, यानी लंबे काल तक पांचवें में रहता है तो ही उसको प्रतिमा प्राप्त होती है, ऐसा है क्या? अरे वो मिथ्यात्व में भी जा सकता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन घूम भी सकता है। अधिक काल रहा इसलिए क्या हुआ? पूरे करोड़ पूर्व तक रहा मान लेते हैं।
नहीं, मेरा मेरे की पूछा, क्योंकि देशघातीकरण, क्योंकि देशघातीकरण चालू हो गया है और वहाँ पे देशघाती पना कंटिन्यूस।
ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लेना उसका अर्थ। ऐसे गुण श्रेणी भी कंटिन्यूस चल रही है। अभी उसकी बात छोड़ो, मुनियों की बात ले लो। मुनि भी भावलिंगी संत जो गुण श्रेणी रूप, उनकी विजरा भी चल रही, रचना भी हर समय चल रही, वो क्यों मिथ्यात्व में आते हैं? जैसे परिणाम होगी ना, पांचवे में रहते हुए भी पांचवे के योग्य संकलेश विशुद्धि होगी कि नहीं होगी? उनका प्रश्न, लंबे काल तक रहते इसलिए वो प्रतिमा?
नहीं, खाली ये तो समझते कि
ज्यादा काल है इसलिए वो ऊपर की प्रतिमा, ये ऐसा नहीं है।
देखिए, मेरे तो देशघातीकरण चलता रहता है, वो अपेक्षा से पूछ लिया था, क्योंकि
चलता है, देशघाती हो गया है, बस इतना ले लो, उसमें चलता रहता है ऐसा मत ले लो। पांचवे में हो गया था
इस तरह से गुण श्रेणी निर्जरा कंटिन्यूस चलती है, ऐसे ही है क्या?
देशघातीकरण कंटिन्यूस नहीं चलता,
नहीं चलता।
वहां पर भी श्रेणी में कहां कंटिन्यूस होता है? हो गया उसका अनुभाग घट गया, बस इतना लेना ना उसका। प्रत्याख्यान का अनुभाग घटेगा, वो पूरी देशघाती हो जाएगी ऐसे थोड़ी है। वही पूरी देश हो गया थी हो जाएगी तो वो आपके कहते वैसे मुनि बना चालू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। वो सर्वघाती किसके लिए? संयम के लिए। अब जैसे अन्यत्र बताया ना, ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर भी वही बात बताएंगे। जैसे हम हमेशा घटित करते हैं वैसा यहाँ नहीं है कह रहे, वो प्रत्याख्यान आवरण है तो सर्वघाती किस लिए? वो संयम के लिए सर्वघाती। तो हम जो अन्यथा उसका अभी अन्यत्र जो उन्होंने घटित किया ना अन्य, कि क्यों नहीं वो सम्यक, जैसे सम्यक प्रकृति पर अकेले पर घटित किया, प्रत्याख्यान पर अकेले घटित किया, तो ये कहते कि ऐसा कितने आचार्य कहते पर वो बराबर नहीं, क्या कहते हैं वो बता रहे। वो प्रत्याख्यान चतुष्क के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से और उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से तथा चारों संज्वलन और नवो नौकशाम के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से और उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय से और प्रत्यक्ष अनावरण कषाय चतुष्क के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से देश संयम उत्पन्न होता है। अनंतानुबंधी आदि 12 कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से उन्हीं के सदवस्थारूप उपशम से चारों संवलन और नवों नौकषायों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से तथा उन्हीं के सदवस्थारूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों के उदय से प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी संयम उत्पन्न होता है। इसलिए उक्त तीनों ही भाव क्षयोपशमिक है, ऐसा कितने आचार्य कहते हैं। रुकना पहले, किंतु उनका यह कथन युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि उदय के अभाव को उपशम कहते हैं ऐसा अर्थ करके उदय से विरहित सर्व प्रकृतियों को तथा उन्हीं के स्थिति और अनुभाग के स्पर्धकों को उपशम संज्ञा प्राप्त हो जाती है। अभी वर्तमान में क्षय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकृति का उदय विद्यमान है उसके क्षय संज्ञा होने का विरोध है। इसलिए ये तीनों ही भाव उदय उपशमिक पने को प्राप्त होते हैं। यानी वो क्या दोष आता है वो बता रहे हैं, किंतु ऐसा माना नहीं जा सकता, क्योंकि उक्त तीनों गुणस्थानों के उदय उपशमिक पना प्रतिपादन करने वाले सूत्र का अभाव है और फल को देकर एवं निर्जरा को प्राप्त होकर गए हुए कर्म स्कंधों के क्षय संज्ञा करके उक्त गुणस्थानों को क्षयोपशमिक कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर मिथ्या दृष्टि आदि सभी भावों के क्षयोपशमिकता का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पूर्वोक्त ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही निरवध्य ने निर्दोष है। कौन सा पूर्ववत बताया था कि प्रत्याख्यान है, वो प्रतिपक्षी प्रत्याख्यान को घातता है, इसलिए सर्वघाती। यानी सर्व प्रकार के चारित्र विनाश करने की शक्ति का अभाव है, इसलिए उसको क्षय का। और जो उत्पन्न जो चारित्र है ऑलरेडी उसको आवरण नहीं करता, इसलिए उसको उपशम का। ये बात बताए, जैसे सम्यक प्रकृति पर घटित किया था वही है यहाँ लेना। वहां सम्यक को ग्राहक करने की शक्ति का अभाव है, उसको क्षय कहा था, और जो सम्यक तो चल रहा है उसी को उपशम कहा था। ऐसे यहाँ पर भी लेना। शंका, दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम क्षय और क्षयोपशम का आश्रय करके संयता संयादि के औपशमिक आदि भाव क्यों नहीं बतलाए। यानी पांचवें गुणस्थान में कौन से भाव होते हैं तो हम कहेंगे औपशमिक, वो कौन कौन से भाव होते हैं, संयोग वगैरह हमने देखे ना, तो वहां कहीं औपशमिक सम्यक तो भी होता है, किसी को क्षयिक सम्यक तो भी होता है। हाँ, तो सम्यक तो कौन सा होता है उसकी बात करेंगे, पर संयमा संयम इटसेल्फ ये जो भाव है वो कौन सा है ये पूछ रहे हैं। तो वहां सम्यक तो कौन सा है उसका भाव यहां नहीं लाना, प्रश्न तो वही बचा है, पूछा उन्होंने कि वहां पर भी ये तीनों प्रकार के सम्यक तो है, तो इन्होंने तीन प्रकार के भाव क्यों नहीं कहे, अकेला क्षयोपशमिक भाव क्यों कह रहे हैं। नहीं, क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म के उपशमादिक से संयमा संयमादि भावों की उत्पत्ति नहीं होती। ये दर्शन मोहिनी के उपशम से तो सम्यक तो प्राप्त होता है, संयमा संयम भाव क्यों उत्पन्न होता है वो तो प्रत्याख्यानावरण के वो। इसलिए हमने बहुत बार यहाँ लिखा है सम्यक तो और संयमा संयम एक साथ प्राप्त होता है, बहुत बार ये ऐसा कथन आया था ना अभी तक कि सम्यक तो और संयम एक साथ धर्म करके, सम्यक तो प्राप्त हुआ है दर्शन मोहिनी के कारण, संयमा संयम हुआ है वो चारित्र मोहिनी के विशिष्ट कारण। दूसरे, यहाँ पर सम्यक तो विषय पृच्छा भी नहीं है, यहाँ तो पृच्छा क्या होता, संयमा संयम प्रमत्त और अप्रमत्त ये भाव कौन से या कौन से भाव होते हैं जिससे कि दर्शन मोहिनी निमित्तक औषमादिक भावों की अपेक्षा संहिता संयत्नादि के औषमादिक भावों का व्युपदेश हो सके, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती। यानी दर्शन मुनि की अपेक्षा चौथे तक की लगती है। अब यहाँ उसकी अपेक्षा यहाँ नहीं है, यहाँ सम्यक तो है, सम्यक तो है वो दर्शन मुनि के उपशम से चौषम से सहिमा संयम भाव क्यों है चारित्रमो अब चदुन्नम व समाप्ति को भावो ओ व समयो भावो अपूर्वकरण आदि चारों गुणस्थान वर्ती उपशामक यह कौन सा भाव है औपशमिक भाव है। देखो यहाँ सर्वत्र औपशमिक भाव लिया, दूसरी भी अपेक्षा वहां शोषण की लगती है जितना उदय है उसकी बात यहाँ नहीं कर रही, वह इस प्रकार है चारित्र मोह कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशमन करते हैं इसलिए चारों गुणस्थान वर्ती जीवों के औपशमिक भाव माना गया है, उत्थाना हुआ माना गया है। अब शंकाकार पूछ रहे हैं समस्त कषाय और नौ कषायों के उपशमन करने से उपशांत कषाय वितराग सदमस्त जीव से जीव के औपशमिक भाव भले ही रहा आवे किंतु अपूर्व कर्णादि शेष गुणस्थानवर्ती जीवों के औपशमिक भाव नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन गुणस्थानों में समस्त मुनि कर्म के उपशम का अभाव है। ये प्रश्न है जो हम हमेशा कहते हैं ग्यारहवें में पूरा उपशम है और यहाँ श्रेणी उसको किसी अपेक्षा सौपशम भी कहेंगे परंतु वहाँ सर्वत्र उपशम भाव भी स्वीकार किया, ये इसीलिए शंकाकार का वही तो प्रश्न है वहाँ क्यों कहते हो वहाँ उपशम में अगर आठवें में तो कुछ नहीं हुआ नौवें में स्टार्टिंग तो हुआ है नहीं क्योंकि कुछ कषायों के हुआ कषायों के उपशमन किए जाने से उत्पन्न हुआ है उपशम परिणाम जिनके ऐसे अनिवृत्तिकरण बादल सांप्राय और सूक्ष्म सांप्राय संयत के उपशम भाव का अस्तित्व मानने में कोई विरोध नहीं है क्योंकि उपशम चारित्र हमने देखा था पहले में पहले किसका उपशम होता है नपुंसक का फिर स्त्रीवेद का फिर पुरुषवेद छह नौ कषाय का फिर क्रोध मान माया फिर लोभ दसवें में भी लोभ का है तो कहते हाँ उनमें तो उपशम भाव होता ही है किसी न किसी प्रकृति का है इसलिए चारित्र का उपशम भाव वहाँ पर भी स्वीकार करेंगे यानी वो विरोध नहीं है। अब कहते शंका का नहीं उपशमन किया है किसी भी कषाय को जिसने ऐसे अपूर्वकरण संयत के औपशमिक भाव कैसे माना जा सकता है आठवें में क्यों मानते हो नौवें में दसवें में माना ठीक है हम मान लेते नहीं क्योंकि अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा प्रति समय असंख्यात गुणश्रेणी रूप से कर्म स्कंधों की निर्जरा करने वाले तथा स्थिति और अनुभाग कांडकों को घात करने करके कषायों की स्थिति और अनुभाग को क्रम से संख्यात और अनंत गुणित हीन करने वाले यानी स्थिति को संख्यात विभाग करता है अनुभाग को अनंत विभाग करता है तथा उपशमन क्रिया का प्रारंभ करने वाले ऐसे अपूर्वकरण संयत के उपशम भाव के मानने में कोई विरोध नहीं है यानी जो उपशम कार्य एक्चुअली होगा उसके कारणभूत परिणाम यहीं से शुरू हुए हैं इसलिए यहाँ पर भी उपशम भाव स्वीकार किया गया। फिर शंकाकार पूछते हैं कर्मों के उपशम से उत्पन्न होने वाला भाव औपशमिक कहलाता है किंतु अपूर्वकरण संयत के कर्मों के उपशम का अभाव है इसलिए उसके औपशमिक भाव नहीं मानना चाहिए। ये बार बार फिर उसी प्रश्न पर आ गए समाधान नहीं क्योंकि उपशमन शक्ति से समन्वित यानी युक्त अपूर्वकरण संयत के औपशमिक भाव के अस्तित्व को मानने में कोई विरोध नहीं है।
समन्वित
है ना उससे युक्त
सहयोग
सहित इस प्रकार उपशम होने पर उत्पन्न होने वाला औपशमी कहलाता है और कर्मों के उपशमनार्थ उत्पन्न हुआ विभाव औपशमी कहलाता है। उपशम के लिए उत्पन्न हुए भाव को भी औपशमी कह देते। यह बात सिद्ध हुई अथवा भविष्य में होने वाले उपशम भाव में भूतकाल का उपचार करने से अपूर्वकरण के औपशमिक भाव बन जाता है। जिस प्रकार की सर्व प्रकार के असंयम में प्रवृत्त हुए चक्रवर्ती तीर्थंकर के तीर्थंकर यह व्यपदेश बन जाता है, यानी वहाँ पर भी उनको तीर्थंकर कहने में आता है चक्रवर्ती पद में भी, क्योंकि अभी होने वाले चदुन्नम खवा सजोगी केवली अजोगी केवलित्ति को भावो खयो भावो चारों क्षपक। अभी जैसे उपशमक में चारों को औपशमिक भाव लगाया, यहाँ क्षायिक भाव लगाएंगे। संयोग केवली और अयोग केवली यह कौन सा भाव है? क्षायिक भाव है। फिर शंका, घाती कर्मों के क्षय करने वाले संयोग केवली और अयोग केवली के क्षायिक भाव भले ही रहा आवे, यानी उन्होंने क्षय कर दिया है वहाँ तो क्षायिक भाव पाए जाते हैं, क्षीण कषाय वितराग छद्मस्त के भी क्षायिक भाव रहा आवे, क्योंकि उसमें उसके भी मोहनीय कर्म का क्षय हो गया है, किंतु सूक्ष्म सांप्राय आदि शेष क्षपकों के क्षायिक भाव मानना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि उनमें किसी भी कर्म का क्षय नहीं पाया जाता है। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि मोहनीय कर्म के एक देश के क्षपण करने वाले बादर सांप्राय यानी नवा गुणस्थान और सूक्ष्म सांप्राय क्षपकों के भी कर्म क्षय जनित भाव पाया जाता है। जैसे हमने देखा नौवे दसवें में कर्मों की उपशमना होती है एक एक के बाद, वैसे कर्मों का क्षय भी हो जाता है। वैसे ही हुआ वेदों का पहले होगा सेनों का शायन का वगैरह वगैरह। पूरा हो गया ना मोहनी का, पूरा क्षय होकर बारहवा गुणस्थान है, यानी वहाँ तो मोहनी की अपेक्षा क्षायिक भाव घटित होगा। चारित्र मोहनी पूरा क्षय हो चुका है तो बारहवें में घटित हुआ तो मान्य किया। अब यह नौवे दसवें में आंशिक हुआ है तो वहाँ पर भी क्षायिक भाव है चारित्र मोहनी का। अब वो वही प्रश्न पूछेगा फिर आठवें में क्यों कही तो? शंका, किसी भी कर्म के नष्ट नहीं करने वाले अपूर्वकरण संयत के क्षायिक भाव कैसे माना जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसके भी कर्म क्षय के निमित्तभूत परिणाम पाए जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर वही कर्म का क्षय करेगा तो वहाँ ये ऐसे परिणाम यहाँ से शुरू हो गए। यहाँ पर भी कर्मों के क्षय होने पर उत्पन्न होने वाला भाव क्षायिक है तथा कर्मों के क्षय के लिए उत्पन्न हुआ भाव क्षायिक है, ऐसे दो प्रकार की शब्द व्युत्पत्ति ग्रहण करना चाहिए अथवा उपचार से अपूर्व संयत अपूर्वकरण संयत के क्षायिक भाव मानना चाहिए। इस प्रकार सर्वत्र उपचार के आश्रय करने पर अति प्रसंग दोष क्यों नहीं प्राप्त होगा? तो सर्वत्र उपचार करो कहेंगे, घोटाला हो जाएगा। समझ नहीं, क्योंकि प्रत्यासक्ति अर्थात समीपवर्ती नजदीकता, प्रत्यासक्ति नहीं नजदीकता, क्योंकि नहीं काल प्रत्यासक्ति निमित्त और निमित्त के एक ही समय में होता है, एक ही समय समय की अपेक्षा वो नजदीक है। जैसे यहाँ प्रत्यासक्ति नहीं नजदीक है, भविष्य निकट भविष्य में होने वाला है। अर्थ के प्रसंग से अति प्रसंग दोष का प्रतिषेध हो जाता है। इस प्रकार ओघ भावानुगम समाप्त हुआ। अभी मार्गणा की बात हम कल देखेंगे। जावान के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवानी मस्तकनम सदा।